لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. سورة النور آيات 42. ذکر کا جو مضمون چل رہا ہے اس پہ گفتگو سے پہلے کچھ اجتماعات کا اعلان کرنا ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست کرنی ہے. اب تو یہ روزمرہ کا دستور بن چکا ہے، اور جوں جوں اللہ کے فضل سے ہم یہ ترقی کرے گی، یہی سلسلہ اجتماعات کا اور جلسوں کا جاری رہتے ہوئے اتنا بڑھ جائے گا کہ میرا نہیں خیال کہ آئندہ پھر خلفاء کے لیے ممکن ہو کہ وہ خطبات میں ان سب کا ذکر کر سکیں. اس لیے جتنے دن بھی ہو سکے، اچھے دن ہیں جو آج میسر ہیں جماعت کو. مجلس خدام الحمدیہ ڈھاکہ 17 دسمبر سے 24 دسمبر تک تعلیمی اور تربیتی کلاس منعقد کر رہی ہے. مجلس خدام الحمدیہ ڈھاکہ ہی نہیں بلکہ ساری مجلس عاملہ بنگلہ دیش ماشاءاللہ بہت ہی مستعد، بہت ہی بہادر اور قربانی کرنے والی مجلس ہے. اور پچھلے دنوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں ناکامی کے بعد اور انتخابات میں ذلت کی مار کے بعد علماء نے اب بنگلہ دیش کا رخ کیا ہے، اور وہاں اسی طرح فتنہ و فساد پھیلانا چاہتے ہیں جیسے کبھی پاکستان میں پھیلا چکے تھے. وہی مطالبے ہیں، وہی شور، وہی سازشیں، اور بنگال کی جماعت کی طرف سے بار بار دعا کی درخواستیں ملتی رہی ہیں. اللہ کے فضل سے وہ بہادر ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور حکومت کو انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر اسی قسم کی شرارت تم نے یہاں کی جیسی پاکستان میں کروائی گئی تھی تو ہم سارے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے حاضر بیٹھے ہیں. اور تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم تھوڑے ہونے کی وجہ سے تم لوگوں سے مروب ہو جائیں گے، لیکن پھر اس کے بعد بنگلہ دیش سے ہمیشہ کے لیے امن اٹھ جائے گا. اس سے بدتر حال کو پہنچے ہوئے جس حال میں احمدیوں کے خلاف کارروائی کے نتیجہ میں پاکستان کا نقصان ہوا، پاکستان پہنچا، اور اس وقت سے قوم منتشر ہوئی ہوئی ہے، بٹی ہوئی ہے، بہت ہی دردناک حالت ہے. تو بہرحال انہوں نے سمجھا کر، کھلے بندوں اشتہارات دے کر بھی اس بات کو واضح کر دیا ہے، خطوط کے ذریعے بھی، لیکن خاص طور پر وہ دعا کی درخواست کرتے ہیں. تمام عالمگیر جماعت احمدیہ سے درخواست ہے کہ وہ بنگلہ دیش کی جماعتوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، और आलम इस्लाम को अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि अहमदियत पे जितनी ज़र पड़ती है इनकी तरफ से, उसके नतीजे में अल्लाह ताला हमें तो बहुत तरक्की देता है, लेकिन आलम इस्लाम पर वो ज़र पड़ जाती है और उसके नुकसानात बहुत गहरे और देरपा ज़ाहिर होते रहते हैं। हिंदुस्तान में जो बाबरी मस्जिद से हुआ, उससे पहले उसका पस मंज़र में अहमदी मसाजिद जलाई गई, मुनज़्ज़िम की गई, बर्बाद किया गया, बांग्लादेश में हमले हुए, वो सारी बातें भूल जाते हैं और फिर ये नहीं सोचते कि ये एक सिलसिला है जो खुदा ताला की तरफ से तुम्हें नसीहत देने के लिए या बात समझाने के लिए अपनी खामोश ज़ुबान में जारी रहता है। एक बदी बदी के फल लाती है और एक गलत हरकत के नतीजे में उसका खुमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ता है, लेकिन अफसोस यह है कि लोग देखते नहीं हैं और बात समझते नहीं हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में 9 निशानात हज़रत मूसा ने पैदर पै उनको दिखाए, यानी अल्लाह ताला की तरफ से, और हर दफ़ा कुछ थोड़ा सा गुमान होता था कि हमसे गलती हुई है, लेकिन फिर वही पुरानी बातें, फिर वही हरकतें, यहाँ तक कि वो सारी कौम खुदा के हुजूर गर्क हो गई। यानी वो जो गर्क हुए वो भी, और जो दूसरे बचे थे वो भी खुदा के नज़दीक गर्क हो चुके थे। तो इसलिए कौमों को इबरत हासिल करनी चाहिए, इबरत की आँखें खुदा ताला से मांगनी चाहिए। अल्लाह ही है जो बसीरत अता फरमाता है, वरना खाली आँखें तो कुछ नहीं देखती। वो सब कुछ बांग्लादेश में फिर करवाया जा रहा है, बांग्लादेश में भी करवाया जा रहा है जो पाकिस्तान में हो चुका है और हो रहा है। इसलिए खसूसियत से दुआ में याद रखें बांग्लादेश की जमातों को, अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहरहाल जो भी उसकी तकदीर ज़ाहिर होगी, एक बात कती है कि जमात के हक में खैर का नतीजा ज़ाहिर होगा। ये तो जमात बारहा देख चुकी है, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, गुज़श्ता 100 साल से ज़ायद अरसा की जमात की तारीख ये बात खूब खोल चुकी है दुनिया पर कि जितना छोटा करने की कोशिश करोगे इस जमात को, उतनी बड़ी होकर निकलेगी, जितना कमज़ोर करने की कोशिश करोगे उतनी ताकतवर होगी, जितना नाम मिटाने की कोशिश करोगे उतना ये नाम फैलता चला जाएगा। बस ये तो अल्लाह की ऐसी तकदीर है जिससे कोई दुनिया की ताकत तब्दील नहीं कर सकती, ये वो सुन्नत है जिसे कोई दुनिया की ताकत मिटा नहीं सकती। लेकिन इस रस्ते में दुख भी उठाने पड़ते हैं। इल्ला आज़न का मज़मून खुद कुरान ने फरमाया है, कुछ का कुछ दुख तो तुम्हें ज़रूर पहुँचेगा। तो अगर दुख मुकद्दर में है तो अल्लाह हमारे दिलों को तक़वियत अता फरमाए, हौसला बख्शे कि हम उसकी रज़ा की राहों पर चलते हुए जो दुख के कांटे रस्ते में हैं उनकी तकलीफ़ भी रज़ाए बारी की ताला की खातिर हंसते हुए सर झुकाते हुए कबूल करें, और जो खैर उन रस्तों पर आगे हमारी मुंतज़िर है अल्लाह उस खैर को बढ़ाता रहे और हर कदम पर तरक्की अहमदियत के कदमों को चूमती रहे। तो बंगाल की जमातों को भी मैं इस बारे में मुतमईन करता हूँ कि जो कोशिश है ज़रूर करें, फैसला वही होगा जो अल्लाह की तकदीर ने चाहा। उस फैसले में अगर कोई बुराई भी हुई तो कती तौर पर, यकीनी तौर पर उस बुराई के पेट से आपके लिए भलाई निकलेगी, और इतनी नुमाया और बड़ी होकर वो भलाई आपको और दुनिया को दिखाई देने लगेगी कि फिर वो कोई लुकी छुपी बात नहीं होगी कि इंसान कोशिश करके दुनिया को बताए कि देखो हम पर ये फजल हुए। वो फजल तो फिर खुद बोलते हैं, अपने आप को खुद दिखाते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह जमात बांग्लादेश ये बातें सुनकर तकवीत हासिल करेगी और जो कोशिश कर रहे हैं उससे बढ़कर दुआओं में ज़ोर लगाएगी। मजलिस खुदावंद अहमदिया कैनेमा सिरा लियोन सूबाई इज्तिमा आज 17 दिसंबर को मुनक़िद हो रहा है। कासल जर्मनी की दाईयान अल्लाह की एक तरबियती क्लास आज 18 दिसंबर को मुनक़िद हो रही है। जमात अहमदिया कैनेमा का जलसा सालाना भी कल 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है। और फ्रैंकफर्ट जर्मनी की नौ मुस्लिमों की तरबियती क्लास भी अल्लाह के फजल से 19 दिसंबर को शुरू होगी। नौ मुस्लिमों की तरबियत का जो अब नया दौर शुरू हुआ है ये बहुत ही अहमियत रखता है। इससे पहले मुझे याद नहीं कि कभी मुनज़्ज़म तरीक पर नौ मुबाइन या नौ मुस्लिमीन को अपने अंदर जज़ब करने और उनकी तरबियत करने का इस तरह मंसूबा के तहत प्रोग्राम बनाया गया हो, लेकिन जो जमातें अल्लाह के फजल से मुस्तैद हो चुकी हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे मंसूबे बनाए हैं, बहुत उम्दगी से उन पर अमल हो रहा है। जर्मनी में तकरीबन 1600 के लगभग बैतें हुई थी और अब वो जहाँ तक मुझे इतलाएँ मिल रही हैं सारी जमात जर्मनी उनको मुख्तलिफ हिस्सों में बांट कर ख़ानदान ख़ानदान करके संभाल चुकी है और शायद ही कोई ऐसा बचा हो जो इस मुआखात के फैज़ से बाहर रहा हो, यानी ख़ानदानों के सुपुर्द बाज़ ख़ानदान कर दिए गए हैं, बाज़ कैंप हैं जो उस इलाके की जमातों के सुपुर्द कर दिए गए हैं, उनसे ताल्लुक़ रखा जा रहा है, उनको अल्लाह ताला के फजल के साथ सिर्फ मोहब्बत से ही नहीं जीता जा रहा, दीन की ठोस तरबियत का इंतज़ाम किया जा रहा है, नमाज़ें सिखाना बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, रोज़मर्रा की दीनी ज़िंदगी के सबक देना और फिर इज्तमात में उनको उनके सुपुर्द ओहदे करना, उनके सुपुर्द ज़िम्मेदारियां करके उनको साथ लेकर आगे बढ़ना, उनको इस्लामी तरीक़ के नारे सिखाना, वो बातें जो दिलों में एक बाज़ छोटी छोटी बातें होती हैं मगर वाक़ियातन दिलों में हंगामा बरपा कर देती हैं, तो वो जब अब अरबी तरीक पर या उर्दू के अल्फाज में ख़ास मौक़े पर खुदा की हम करेंगे, खुदा का ज़िक्र बुलंद करेंगे, तहरीर व तकबीर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसका बहुत गहरा और लंबा असर पड़ेगा। तो इन सब को अपनी दुआओं में याद रखें कि ये सारे तरबियती इज्तमात हर पहलू से कामयाब रहें और जो कमज़ोरियाँ रह गई हैं अल्लाह ताला उनसे अफ़ का सलूक फरमाए और इनके नतीजे में जमात ना सिर्फ मुस्तकम हो बल्कि आइंदा तेज़ी से आगे बढ़ने की बुनियादें कायम हों। हर मंजिल जो हम आगे बढ़ते हैं एक और मंजिल की खुशखबरी देती है, लेकिन वहाँ बेस कैंप मजबूत करना ज़रूरी है क्योंकि हमारा सफ़र बुलंदियों की तरफ है और बुलंदियों की तरफ जो सफ़र होते हैं उनमें ये एक मुहावरा है बेस कैंप को मजबूत बनाना। जितना बेस कैंप मजबूत होगा उतनी ही ज़्यादा आगे बुलंदी की तरफ हरकत करने के सामान मैसर आएंगे, कम से कम ख़तरात से इंसान ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र तय कर सकता है। तो हम बुलंदियों की तरफ चढ़ने वाले हैं, हर मंजिल जो हम जीतेंगे वहाँ अब लाजिमन बेस कैंप बनाने होंगे और उनको जितना मजबूत बनाएंगे उतने ही बुलंदतर चोटी फिर आगे आपका इंतज़ार कर रही होगी। मैं उम्मीद रखता हूँ इसी तरह इंशाल्लाह मंजिल ब मंजिल अब ये काफिला जल्द जल्द बढ़ेगा, जल्द जल्द आगे सफ़र बुलंदी की तरफ रवाना रहेगा और बढ़ता चला जाएगा। ज़िक्र के सिलसिले में मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत की है इसका मतलब है कि क्या तू नहीं देखता कि अल्लाह की तस्बीह करता है जो कुछ भी है आसमानों में और ज़मीन में, और परिंदे भी सफ़ पर सफ़ यानी एक सफ़ के ऊपर दूसरी सफ़ परिंदे भी तस्बीह कर रहे हैं, कुल्लुन क़द अलिमा सलातहु व तस्बीहा, हर एक को अपनी इबादत का और तस्बीह का अंदाज़ सिखाया गया है और वो जान चुका है, वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़लून, और अल्लाह ताला उस चीज़ को जो तुम करते हो खूब जानता है। ज़िक्र के सिलसिले में हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का अंदाज़े ज़िक्र पेश किया जा रहा है कि आपने हमें किस तरह ज़िक्र करना सिखाया। یہ بہت وسیع مضمون ہے, مگر جو چند احادیث میں نے منتخب کی تھیں ان میں سے جو باقی ہیں وہ آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں امرؤ القیس کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں جس کا ذکر ہی کے مضمون سے عملاً تعلق ہے. اس کا ذکر اور طرح کا تھا اور مومن کا ذکر اور طرح ہوتا ہے, لیکن ذکر کا مضمون ملتا جلتا ہی ہے. وہ کہتا ہے قفا نبک من ذکر حبیب و منزلی بے سخت اللوا بین الدخول فہوملی, کہ اے میرے ساتھی دو ساتھیو قفا تم ذرا ٹھہرو, نبک من ذکر حبیب و منزلی, ہم کچھ دیر اپنے محبوب کے ذکر سے اور اس کی منزل کے ذکر سے رو نہ لیں. ذرا ٹھہرو, کچھ دیر رکو کہ ہم اس پیارے ذکر کا پیارا ذکر چھیڑ کر کچھ آنسو بہاتے ہیں. بے سخت اللوا, وہ منزل ایک ایسی جگہ واقع ہے جسے سخت اللوا کہا جاتا ہے, اور دخول اور حومل دو مقامات کے درمیان واقع ہے. شعراء کا عموماً یہی طریق ہے کہ جہاں جہاں محبوب کے آثار دیکھتے ہیں وہاں ٹھہرتے ہیں, اور عام یادوں سے بڑھ کر ان مقامات پر محبوب کی یاد آتی ہے. اور جیسا کہ اس شعر سے ظاہر ہے کہ یاد کے ساتھ آنسو بھی بہتے ہیں. جہاں تک ذکر الہی کا تعلق ہے, وہاں کسی ایک منزل کا سوال نہیں جو ذکر کی طرف آپ کی توجہ پھیرے. خدا تعالیٰ تو ہر جگہ جلوہ دکھا رہا ہے, اور ہر جلوہ اس شان کا ہے کہ ناممکن ہے کہ آپ کسی طرف نظر ڈالیں اور ذکر کی طرف توجہ مبذول نہ ہو. تو اگر امرؤ القیس کے لیے ایک منزل اس حد تک محبوب کی یاد دلاتی تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملا کر وہاں ٹھہر کر رونا چاہتا تھا, تو ہمیں تو ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی یاد دلاتا ہے, یعنی اس مومن کو یاد دلاتا ہے جس کو بصیرت ہو. اور اللہ کی محبت سے انسان کی آنکھیں اگر ہمیشہ ظاہراً تر نہ بھی رہ سکیں, تو بسا اوقات دل میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے دل اندر سے محبت میں پگھل کر روتا ہے, اور ظاہراً آنسو نہ بھی برس رہے ہوں تو ایک محبت کی بارش اندر کی طرف ہوتی ہے. اور ہر اہل تجربہ یہ جانتا ہے کہ ضروری نہیں کہ آنسو آنکھوں کے رستے بہیں, جو پیار اور محبت کی باتیں ہوتی ہیں ان میں دل نرم ہو کے پگھل جاتا ہے. اور قرآن کریم نے اسی قسم کے نقشے کھینچے ہیں کہ بعض دفعہ دل پگھل جاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ روح آستانہ الوہیت پر بہنے لگتی ہے. تو آنسو جس طرح بہتے ہیں اسی طرح دل پگھل کر آستانہ الوہیت پر بہنے لگتا ہے. اور یہ جو موقع ہے, یہ کوئی ایک موقع نہیں بلکہ ساری کائنات میں ہر طرف یہ مواقع پھیلے پڑے ہیں. صبح سے رات تک انسان جتنا بھی سوچے خدا تعالیٰ کی تسبیح اور خدا تعالیٰ کی تحمید کے بے حد بے شمار مضمون اس کی نظر کے سامنے آتے ہیں, اور ان کا انسان حق ادا نہیں کر سکتا. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ دن رات ہمتن ہمیشہ ہر بات میں اللہ ہی کی یاد آپ کو آتی تھی, اور اللہ ہی کی یاد میں محو رہ کر آپ نے زندگی گزاری ہے. تمام دنیا سے تعلقات اللہ تعالیٰ کی یاد سے کے حوالے سے ہوتے تھے, اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے نتیجے میں آپ کی محبتیں تھیں. اللہ تعالیٰ کی آنکھیں جس سے پھرتی تھیں, آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی اس سے پھر جاتی تھیں. گویا خدا نما وجود ان معنوں میں تھے کہ جہاں آپ کی محبت کی نظر پڑی ضرور وہاں خدا کی محبت کی نظریں پڑتی تھیں, جہاں آپ کی ناراضگی کی آنکھ जिसको आपने नाराजगी की आंख से देखा, खुदा की नाराजगी की आंख भी उसे उसी तरह देखती थी। और ये दो तरफा मजमून है। जिक्र करने वाले बाज़ दफ़ा इस तरह इंसान से मोहब्बत करते हैं कि उनको इल्म होता है कि खुदा इनसे मोहब्बत कर रहा है और उसके नतीजे में मोहब्बत पैदा होती है। बाज़ दफ़ा उनको किसी से मोहब्बत पैदा होती है तो खुदा उनसे ज़रूर मोहब्बत करता है। और ये मज़मून हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे खूब खोल दिया है, हमारे सामने खूब खोल दिया है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि खुदा के प्यारे हम वक्त ये कोशिश करते हैं कि अल्लाह के प्यारों से प्यार करें, और अल्लाह का उनसे ये सलूक होता है कि उनके सब प्यारों से प्यार करता है, और जिनसे वो नाराज़ हों उनसे खुदा नाराज़ होता है। ये मज़मून है दोनों का के रुझानात का एक हो जाने का मज़मून। जब दिल मिल जाएं तो नीयतें मिल जाती हैं, रुझानात एक हो जाते हैं, और एक ही सिमत में सारे ताल्लुकात के दायरे बहते हैं। चुनांचे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक जो फरमाया गया कि आप काना काब कौसैन व अदना, आप दो कौसों के दरमियान एक वथर बन गए। इसकी अमूमन ये तस्वीर खींची जाती है जो दुरुस्त है और बहुत से मानी पर हावी है कि दो कौसें यानी दो कमाने जिनसे तीर चलाया जाता है वो यूं आमने सामने हों और बीच में एक वतर हो। इसका मतलब ये है कि अल्लाह और बंदों की दुनिया के दरमियान, अल्लाह और मखलूक के माबैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मर्तबे तक पहुंच गए जहां खुदा की का तंजीही मुकाम शुरू होता है, यानी उससे आगे मखलूक की कोई गुंजाइश नहीं और मखलूक की इंतहा वहां तक है, उससे आगे बढ़ नहीं सकती। तो दोनों कौसों के दरमियान हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर बन गए। मैं इस मज़मून को एक और तरह से भी देखता हूँ। अगर दोनों कौसें एक ही सिमत में हों, एक बड़ी और एक निस्बतन छोटी, और दोनों का वतर एक हो, तो जो तीर उससे चलाया जाएगा वो दोनों कौसें बयकवत चलाएंगी, दोनों की ताकतें एक दूसरे से बिल्कुल मुदगम हो जाएंगी। और ये नहीं कहा जा सकता कि इस तीर चलाने में कितना उसकी ताकत ने हिस्सा लिया और कितना उसकी ताकत ने हिस्सा लिया, बल्कि वो एक ही वजूद के एक ही हाथ के चलाए हुए तीर बन जाते हैं। इन मानों में जब हम इस आयत करीमा पे गौर करते हैं, वमा रमैता इज रमैता वलाकिनल्लाह रमा, जिसके माने मुट्ठी कंकरियों की मुट्ठी फेंकना भी है लेकिन लफ्जी तर्जमा तीर चलाना है, तो ये माने हुए कि जब ए मोहम्मद जब तूने तीर चलाया तो तेरी कौस तो अल्लाह की कौस से अलग नहीं है, तेरी कौस के साथ खुदा की कौस शामिल है। बस जब तूने तीर चलाया तो अल्लाह ने तीर चलाया और ये फ़र्क नहीं रहा। बस जो मज़मून मैं बयान कर रहा हूँ इसको कुरान की सनद हासिल है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वजाहत से बार बार मुख्तलिफ रंग में खोल कर बयान फरमाया है कि बाज़ बंदे ज़िक्र इलाही के नतीजे में अल्लाह ताला की महब्बत में ऐसे खोए जाते हैं कि अपना वजूद अलग नहीं रहता, और इसका एक तबी नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह अपना सब कुछ उनके साथ शामिल फरमा देता है। उनका एक कतरा खुदा के समंदर में इस तरह मुदगम होता है कि हर कतरे में उनका हिस्सा पाया जाता है और हर खतरा उनके एक खतरे में अपने जलवे दिखा रहा होता है। इस लिहाज से खुदा के साथ हम आहंग होना शिर्क का मज़मून नहीं रखता बल्कि महवियत का मज़मून रखता है, ला इलाह का मज़मून है, इसके सिवा और कोई मज़मून नहीं। शिर्क ये है कि खुदा अलग रहे और बंदा अलग रहे, खुदा की ताकत का अलग ज़िक्र करें और बंदे की ताकत का अलग ज़िक्र करें। مگر اگر بندے کی طاقت خدا میں مدغم ہو چکی ہو اور خدا ہی کی طاقت بندے کی طاقت کے ساتھ جلوے دکھائے, جسے شرک نہیں کہتے, اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ, کہ دراصل خدا کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ ہی ہے جو جلوہ گر ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریق پر صحابہ کو سمجھایا کہ کس طرح ذکر کیا کرتے ہیں, اور ایسا پیارا انداز ہے کہ اس کو سن کر ممکن ہی نہیں کہ ایک انسان ذکر الہی کی طرف مائل نہ ہو, ذکر الہی کا عاشق نہ ہو جائے. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا للہ تبارک و تعالی ملائکتا سیارتا فضلا یتبعون مجالس الذکر. اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. مسلم کتاب الذکر باب فضل مجالس ذکر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کے کچھ بزرگ فرشتے گھومتے رہتے ہیں اور انہیں ذکر کی مجلس کی تلاش رہتی ہے. جب وہ کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور پروں سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں. ساری فضا ان کے اس سایہ برکت سے معمور ہو جاتی ہے. بس وہ آیت کریمہ جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی, دراصل اسی کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. الم تر ان اللہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض والطیر صافات. یہاں فرشتوں کو کی جو تصویر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھینچی ہے, وہ پرندوں کی طرح ہے جو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں. اور ایک دوسری آیت میں انہی تسبیح کرنے والے فرشتوں کا یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ جو کو بھر دیتے ہیں. اور وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. تو دراصل پرندوں کی اصطلاح میں فرشتوں کی باتیں بھی کی جاتی ہیں, اور یہ بھی درست ہے کہ خود پرندے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں جس زبان میں, جس طریق پر خدا نے ان کو سمجھایا ہے. تو اس حدیث سے اس آیت کریمہ کی تطبیق ہوتی ہے. فرمایا یقولون جینا من یملا و ما بین ہوں و ما بین السماء دنیا, کہ فرشتے ہیں جو ذکر کرتے ہوئے کی مجلس کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں اور اس ذکر میں ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, اور پھر تہ بتہ صف بصف جیسے پر پھیلائے ہوئے پرندے ایک تہ کے بعد دوسری تہ میں آسمان میں بلند تر ہوتے چلے جا رہے ہوں اور سارا آسمان ایسے پرندوں سے بھر جائے, ویسے ہی نقشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھینچتے ہیں. ساری فضا ان کے اس سایہ برکت سے معمور ہو جاتی ہے. جب لوگ اس مجلس سے اٹھ جاتے ہیں تو وہ فرشتے بھی آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے, حالانکہ وہ سب جانتا ہے. یعنی خدا کا پوچھنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس کو علم نہیں ہے, پھر کس لیے ہے؟ اس لیے کہ جب انسان کسی پیارے کی مجلس کی باتیں جانتا بھی ہو تو ان کو دوبارہ سنتا ہے اور پھر سنتا ہے اور پھر سنتا ہے, اور پیاس نہیں بجھتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, میں اپنے بندوں سے ویسا ہی سلوک کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے کرتے ہیں. جو میرے ذکر کے متلاشی رہتے ہیں اور میرے ذکر سے ان کو لطف آتا ہے, مجھے بھی ان کے ذکر سے لطف آتا ہے. تو یہ جو پوچھنا ہے اب بار بار جو ذکر آئے گا, اس سے یہی مراد ہے کہ ایسے بندوں سے اللہ پیار کا اظہار کرتا ہے. فرمایا وہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے, حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے, کہاں سے آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں, ہم تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح کر رہے تھے, تیری بڑائی بیان کر رہے تھے, تیری عبادت میں مصروف تھے اور تیری حمد میں رتب اللسان تھے, اور وہ تجھ سے دعائیں مانگ رہے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں, یعنی جانتے ہوئے کہ کیا مانگتے ہیں پوچھتا ہے کیا مانگتے ہیں. اس پر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر کہتا ہے, کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں, اے ہمارے رب, उन्होंने तेरी जन्नत तो नहीं देखी। अल्लाह ताला फरमाता है उनकी क्या कैफियत होगी अगर वो मेरी जन्नत को देख लें। फिर फरिश्ते कहते हैं वो तेरी पनाह चाहते हैं। अल्लाह ताला इस पर फरमाता है वो किस चीज़ से मेरी पनाह चाहते हैं। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं तेरी आँख से पनाह चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है क्या उन्होंने मेरी आँख देखी है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं देखी तो नहीं। खुदा ताला फरमाता है उनका क्या हाल हो अगर वो मेरी आँख को देख लें। फिर फरिश्ते कहते हैं वो तेरी बख्शिश तलब करते थे। इस मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला कहता है मैंने उन्हें बख्श दिया और उन्हें वो सब कुछ दिया जो उन्होंने मुझसे मांगा और मैंने उनको पनाह दी उस चीज़ से जिससे उन्होंने मेरी पनाह तलब की। इस पर फरिश्ते कहते हैं हमारे रब उनमें फलां गलतकार शख्स भी शामिल था। वो वहाँ से गुजर रहा था जिक्र करते हुए लोगों को देखा तो तमाशबीन के तौर पर उनमें बैठ गया। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि अल्लाह ताला जवाब देता है मैंने उसको भी बख्श दिया क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि उनके पास बैठने वाला भी महरूम और बदबख्त नहीं रहता। अब जिक्र इलाही का बयान इससे बेहतर तसव्वुर में नहीं आ सकता। ऐसा बयान जो जिक्र इलाही की मोहब्बत पैदा कर देता है दिल उससे पिघलने लगता है। इसमें ख़ास तौर पर ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए अल्लाह ताला फरमाता है वो जन्नत मांगते हैं तो उन्होंने जन्नत देखी है। वो कहते हैं नहीं देखी। फरमाता है अगर वो देख लें तो उनका क्या हाल हो। तो अमरे वाकया ये है कि जो दुआएं हम कर रहे हैं उन दुआओं की कुनों से हम खुद वाकिफ नहीं हैं। बाज़फ़ा एक इंसान गलती से एक सौदा कर लेता है और पता चलता है कि तो बहुत ही बड़ी चीज़ थी। चुनाचे एक दफ़ा हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि एक सादा लौ ज़मींदार वो कराची घूमता फिरता मनी मार्केट में चला गया जहाँ बहुत बड़े बड़े सौदे हो रहे थे पैसों के हिसाब से कि एक पैसा एक ढेला इसमें इजाफा हो गया एक पाई इजाफा हो गया। वो समझा कि ये कुछ चीज़ बिक रही है और पाइयों और ढेलों और पैसों के हिसाब से बोलियाँ बढ़ रही हैं तो उसने भी साथ बोली देनी शुरू कर दी कि अच्छा फिर एक ढेला मेरा है पैसा लिख लो मेरे दो पैसे लिख लो। वो सब हैरान हो गए और शिशदर रह गए। वो समझे कि बहुत ही बड़ा कोई सेठ आ गया है इससे मुकाबला मुमकिन नहीं। चुनाचा उसके नाम बोली लिखी गई जो करोड़ों की थी और उसको बेचारे को इल्म नहीं था कि सौदा कैसा हुआ है। अचानक खबर आई कि उस जिस का भी सौदा हो रहा था वो एकदम उसकी कीमत बढ़ गई है तो सारे सेठ उस पर टूट पड़े कि नकदो नकद हमसे इतना मुनाफा लो और ये सौदा हमारे नाम कर दो। तो वैसा ही नक्शा अल्लाह खींच रहा है। फरमाता है वो तो सादा जिम्मेदार की तरह है उनको पता नहीं बोली किस बात की दे रहे हैं। मुझसे जो मांग रहे हैं मैंने दे तो दिया है लेकिन वो ऐसा है कि उनके तसव्वुर में भी नहीं आ सकता। और यही बात है जो कुरान करीम ने जन्नत के मुतालिक बयान फरमाई है किसी आंख ने नहीं देखी किसी कान ने नहीं सुनी उनके तसव्वुर से भी बढ़कर है और वो ज़मीन और आसमान पर सारी कायनात पर मुहित है। तो जिक्र इलाही करते हुए चंद मिनट में आप कितने बड़े बड़े सौदे कर लेते हैं और सारी कायनात खुदा से ले लेते हैं और आपको पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं और कितनी छोटी छोटी बातों पर कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती हैं। इसीलिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो कलेमात हैं कलेमतान हैं खफीफतान हैं हल्के फुलके हैं हबीबतान हैं रहमान हैं अल्लाह को बहुत प्यारे हैं हल्के फुलके हैं लेकिन सकीलतान हैं फिल मीज़ान हैं वज़न में बहुत भारी हैं हबीबतान हैं रहमान हैं अल्लाह को वो दोनों बहुत प्यारे कलेमे हैं, कलेमे हैं। वो क्या हैं? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम। पाक है अल्लाह अपनी हम्द के साथ, सुभान अल्लाह अज़ीम वो अल्लाह पाक है जो बहुत अजीम है। तो ये दो कलमों में जो सौदे हैं वो बहुत भारी हैं, ये मुराद है। मिज़ान इनका बहुत भारी है और ज़ुबान पर हल्के हैं। अब सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम पर ही गौर करें तो जितना आप इसमें डूबते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा मज़मून और गहरा होता हुआ दिखाई देता देगा, बल्कि महसूस होगा। जितना इस मज़मून में सफ़र करें उतना ये मज़मून फैलता चला जाता है। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, और किस किस चीज़ से पाक है इस पर गौर करें तो फिर तस्बीह होगी, वरना खाली ज़ुबान से कह देने से कुछ बात बनेगी नहीं। वज़न इनमें पैदा होता है मगर हर कारी के लिहाज से मुख्तलिफ वज़न पैदा होता है। जब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह कहते थे तो एक आम कारी की तरह सुभान अल्लाह नहीं कहते थे, बल्कि सारी ज़िंदगी अपने आप को अल्लाह के हवाले से पाक किया था, और सारी ज़िंदगी इस तलाश में रहते रहे कि कोई एक ज़र्रा भी ऐसा ना हो जिस जो खुदा ताला के की अज़मत को पेश नज़र रखते हुए मेरी दिल की दुनिया को इस लायक ना ठहराए कि उसमें खुदा ताला जलवागर हो। ये आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सोच थी जो आपकी सारी ज़िंदगी में हर तरफ में आपके अखवाल से भी और आपके अमाल से भी साफ दिखाई देती है। सुभान अल्लाह का ये माना फिर बनता है कि हर वक्त अल्लाह की तस्बीह को पेश नज़र रखते हुए अपने नफ्स को पाक करते चले जाना, क्योंकि नापाक जगह पर पाक वजूद नहीं आया करते। बस अल्लाह के लिए दिल की सफाई करना इन मानों में हुआ कि कुछ जगह थोड़ी सी अब साफ कर ली कुछ बाद में, और हमेशा जगह की सफाई जारी रहे। बाज़ दफ़ा अचानक मेहमान आ जाते हैं तो इंसान को ये ताकत नहीं होती कि सारा घर एकदम साफ कर सके, तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, भाग दौड़ कर बच्चे भी हिस्सा लेते हैं, माएँ भी सब दौड़ते हैं कि एक कमरा जल्दी से साफ कर लो, और उसके जो गंदे कपड़े दूसरे सामान जो वहाँ बिखरे पड़े होते हैं सब उठा उठा कर एक कमरे में फेंक देते हैं। तो अल्लाह ताला को जब मेहमान बनाना है तो अंबिया का मकाम तो बुलंद है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो बहुत बुलंद तर था, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें भी कुछ ना कुछ सुभान का मज़मून अपने नफ्स में जारी करना होगा। थोड़ी सी जगह बना लें, और वाक़िया ये है कि ये कहना कि एक पाक आदमी पाक जगह पे बैठता है, पाक जगह को पसंद करता है, ये दुरुस्त है, मगर ये मतलब नहीं कि अगर उस घर में कोई और गंदी जगह होगी तो वो उस घर को छोड़कर चला जाएगा। अल्लाह ताला का ये एहसान है कि वो अपने बंदे की एक थोड़ी सी जगह भी अगर साफ देखे तो उस जगह से ताल्लुक जोड़ लेता है, और फिर उसके क़ुर्ब का एहसास इर्द गिर्द माहौल को पाक साफ करने की तरफ तवज्जो दिलाता है, और रफ्ता रफ्ता घर साफ होने लगता है। तो जितना सुभान अल्लाह का मज़मून जहन में वसत इख्तियार करे और जितना ये आपकी दुनिया के अमल में ढलता चला जाए उतना ही इस मज़मून में वज़न पैदा होता चला जाता है। बस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुभान अल्लाह कहते थे तो आपका सारा वजूद गवाह था कि मैं वाकईतन अल्लाह को पाक समझता हूँ, इतने यकीन के साथ पाक समझता हूँ, और पाकी की मेरे नज़र में इतनी कीमत है कि खुदा की पाकी पर जहाँ जहाँ नज़र पड़ती है मैं वहाँ वहाँ अपने वजूद के साथ मुआवजा करते हुए उस वजूद को भी पाक करता चला जाता हूँ। तो दरअसल ये ला इलाह का सफ़र है, सुभान अल्लाह, अल्लाह के सिवा और कुछ नहीं है, जो भी है नापाक है, और खुदा नापाक नहीं है, इसलिए ज़ाहिर बात है कि हर नापाकी का लदम है, उसकी हैसियत ही कोई नहीं रहती, उसको मिटा देना जरूरी है। वो बेवजह बेहक नाहक बैठी हुई है वहां, और ला इलाहा इस तरह इंसान के दिल पर जारी होता है, उसके आमाल में जलवे दिखाता है, और सुभान अल्लाह का मजमून वजन इख्तियार करता चला जाता है। तो सकीलतान फिल मीज़ान का मतलब ये है कि वो, अगर गौर करोगे तो तुम्हें मालूम होगा कि हल्के फुल्के कलमे नहीं हैं, मुंह से तुमने छोटी सी बोली लगा दी है, उसके पीछे बड़ा वजन है, गैर मामूली बहुत ही भारी मजमून है जो तुम बयान कर रहे हो। और ये मजमून जितना भारी होता चला जाता है उतना ही खुदा को पसंद आता चला जाता है। हबीबतान इलर रहमान, ये दोनों कलमे अल्लाह के हजूर ज़्यादा महबूब होते चले जाते हैं, और ये कलमा कहने वाला उतना ही ज़्यादा अल्लाह के करीब होता है, उसका महबूब बनता चला जाता है। दूसरा हिस्सा है सुभानअल्लाह अज़ीम, कि अल्लाह अजीम है, अजमत का मजमून हम से ताल्लुक रखता है। बस जहां सुभानअल्लाह व बिहम्दिही में हम्द कहकर एक दरवाजा खोला गया है कि सिर्फ सुभानअल्लाह नहीं कहना बल्कि हम्द भी करनी है, वहां सुभानअल्लाह अज़ीम ने वो हम्द का एक लामुतनाही सिलसिला आपके सामने खोल के रख दिया है। एक ऐसी दुनिया में आपको ले जाता है सुभानअल्लाह अज़ीम का कलिमा कि जहां हर तरफ हम्द ही हम्द है। मगर इन दोनों में एक फर्क है, सुभान के साथ हम्द का ताल्लुक है, सुभान का मजमून जितना बढ़ता है उतना ही हम्द का मजमून साथ साथ हवैदा होता चला पैदा होता चला जाता है, और यहां तक कि आपकी दुनिया सिर्फ हम्द की दुनिया रह जाती है, और वो दुनिया है जिसका जिक्र है सुभान अल्लाह अज़ीम में। बाद लोग ये बाज दफा कहते हैं कि अल्लाह ताला को आजम नहीं कहा गया, हालांकि अकबर कहा गया है, और दूसरी जगहों पे खुदा ताला का सबसे बड़ा होना, सबसे ज्यादा इल्म वाला होना, सबसे ज्यादा अपनी दूसरी सिफात में तमाम दूसरे बज़ाहिर सिफात में मुशाबे लोगों से आगे और बरतर होना, ये मजमून नज़र आता है। मगर अजीम के ताल्लुक में कहीं आज़म नहीं फरमाया गया। चुनांचे जर्मनी के इज्तम में एक दफ़ा एक अरब दोस्त ने मुझसे सवाल किया था, और उस पर जो उस वक्त अल्लाह ताला ने मुझे समझाया, मैंने उसे समझाया, बाद में मज़ीद तहकीक की तो पता चला कि लफ्ज़ अजीम में जो अजमत पाई जाती है वो लफ्ज़ आज़म में नहीं पाई जाती। अजीम एक ऐसा ऐसे वजूद को कहते हैं जो अपनी ज़ात में हर सिफात हर सिफ्त में एक ऐसी शान रखता हो कि उसकी अजमत से गोया सारी कायनात भर गई है, और हर बुरी चीज़ के मुकाबले पर जो अच्छी सिफत है उसे वो उसके हामिल को अजीम कहते हैं। मसलन छोटी घटिया बात नहीं करनी, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, प्यार का सलूक करना है, जितनी भी सिफात रोज़मर्रा आपकी ज़िंदगी में आपको अच्छी लगती हैं, जिस चीज़ में जिस शख्स में पाई जाएंगी वो अजीम होगा। और अगर वो तमाम सिफात हसना किसी एक वजूद में पाई जाएं तो उसको हकीकी मानों में हम अजीम कह सकते हैं कि बड़ा अजीम इंसान है। एक लफ्ज़ अजीम में आपने उसको पता नहीं कितनी दादें दे दी हैं, और हकीकत में जब किसी इंसान का आपके दिल पर रोब पड़ता है और आप उसके सिफात हसना से मुतासर होते हैं तो बेख्तियार दिल से उसकी अजमत का तिराना उठता है, वो बहुत अजीम इंसान है। और वहाँ किसी से मुकाबले का मजमून नहीं होता, उसके मुकाबले पर अजीम का सवाल नहीं कभी उठता, ना जहन इस तरफ मुतवज्जे होता है, अपनी ज़ात में गोया बेमुकाबला रह गया है वो शख्स, और मुकाबले का कोई सवाल नहीं रहा। तो सुभानअल्लाह अज़ीम कहकर यानी सिखा कर हमें अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई कि सुभान का रास्ता अख्तियार करो, पहले अल्लाह ताला को हर दूसरी हर ऐब से बल्कि हर गैरुल्लाह से पाक ख्याल करो, یقین کرو, اس کے مضمون کو سمجھو, اس کو اپنی زبان کے ساتھ اپنے دلوں پہ جاری کرو, پھر تمہیں حمد کی اجازت ہوگی, یعنی پھر تم مجاز ہوگے اس بات کے, تمہارا حق ہوگا کہ حمد بیان کرو, کیونکہ گندگی کے ساتھ حمد نہیں رہ سکتی. ہر جگہ جہاں پاکی پیدا ہوگی اس کے ساتھ ہی حمد کا مضمون خود بخود ابھرائے گا. اور پھر تم سبحان اللہ العظیم کہو گے تو ایک نئی شان کے ساتھ کہو گے, نئے عرفان کے ساتھ کہو گے. اللہ کی عظمت اس طرح تمہارے وجود پر چھا جائے گی کہ کسی اور وجود کا سوال ہی نہیں رہے گا. اکبر کا کیا سوال ہے, اعظم کا کیا سوال ہے پھر, جب اور ہے ہی کوئی نہیں. تو لا الہ الا اللہ میں جو مضمون ہے وہی عظیم کے لفظ نے ہمارے, وہی اس کلم, ان کلمات, کلمتان میں ہے, ان دو کلموں میں ہے. اور لفظ عظیم میں اکیلا ایک عظیم رہ گیا ہے, کوئی اور وجود ہے ہی نہیں, تو اس کے ساتھ مقابلہ کیا کیا جائے. یہ وہ طریق تھا جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے کہ اس طرح حمد کی جاتی ہے. یہ دو کلمات آپ ہی نے تو بیان فرمائے کہ خدا کو بہت پیارے ہیں اور ان میں وزن بھی بہت ہے, زبان پر ہلکے ہیں, لیکن ان اس میں ایک ایک فقرے میں گہرے مضامین پوشیدہ ہیں. ہلکے ہیں مگر ہلکے سمجھنا نا, اور اگر ہلکے نہ سمجھو گے اور وزندار سمجھو گے تو پھر وزن کی تلاش بھی کرو گے, ورنہ بغیر تلاش کے اسی طرح زبان فرفر کرتے ہوئے آگے نکل جائے گی. مطلب ہے ٹھہر ٹھہر کر, سوچ سوچ کر, سمجھ سمجھ کر, اپنے وجود میں جاری کرتے ہوئے آگے بڑھو, اور پھر تم ایسی دنیا میں پہنچ جاؤ گے جہاں خدا کے سوا کسی کی عظمت باقی نہیں رہتی, ایک ہی ہے جو عظیم ہے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو جنت, خدا تعالیٰ فرماتا ہے جنت دیکھی ہے, وہ کہیں گے نہیں دیکھی تو نہیں. اچھا اگر دیکھ لیتے پھر کیا کرتے, بغیر دیکھے یہ حال ہے کہ مجھ سے جنت مانگ رہے ہیں, تو ان کو کیا پتا کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں. پھر فرماتا ہے جہنم سے, جہنم کبھی دیکھی ہے انہوں نے؟ وہ کہتے نہیں. وہ کہتے میری اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مور مقام پر فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو خدا تعالیٰ کی پکڑ کا احساس ہو جائے تو اس کا کوئی گناہ کا کوئی سوال ہی اس کے لیے باقی نہیں رہتا, سب کچھ جل جائے اس میں. اور اگر اس کی بخشش کا پتہ چل جائے تو وہ تو سمجھے کہ ساری دنیا, اس کائنات ہی میری ہے, موجیں کرتا پھرے. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ماں بہن, دونوں کے درمیان انسان کو چلاتا ہے, اپنی بخشش کا بھی اظہار کرتا چلا جاتا ہے اور اپنی پکڑ کا بھی سے بھی متنبع کرتا چلا جاتا ہے. فرماتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی بخشش کرنے والا نہیں, اس کی رحمت ساری ہر دوسری چیز پر محیط ہے. اور پھر فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں بتاتا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے زیادہ اور کوئی پکڑ نہیں ہے. تو جنت اور جہنم یہ دو مضمون ہیں جو ہمارے سامنے کھول رہی ہیں. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں تمہارے لیے ابھی بہت سے سفر باقی ہیں. جب تم جنت مانگتے ہو تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا مانگ رہے ہو, اس لیے اور غور کرو, خدا تعالیٰ کی جنت کے مضمون کو اور سمجھو, معلوم تو کرو کہ وہ ہے کیا چیز. اور خدا کا خوف دل پر طاری کرنے کی غرض سے جہنم کے مضمون کو بھی زیادہ گہرائی سے سمجھو, اور ہلکے پھلکے انداز میں اس کو نہ لینا. اگر تم جہنم کے مضمون سے واقف ہو جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں ان کا کیا حال ہو. یعنی کوئی ایسی کیفیت ہے جس کو انسان سمجھ نہیں سکتا کہ کیسی عجیب کیفیت طاری ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا شخص, ایسے لوگ جو خدا کے ذکر میں اس طرح محو ہوں کہ صرف ذکر الہی کی بات ہو رہی ہے, اللہ کے پیار کی باتیں ہیں, اس سے بخشش طلب کی جا رہی ہے, اس سے اس کی نعمتیں مانگی جا رہی ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ جو بیٹھ جائے وہ بھی بد نصیب نہیں ہوا کرتا. तो हमने तो सारी दुनिया के लिए बरकतें, सारी दुनिया के लिए हम बरकतें लेकर आए हैं, सारी दुनिया की निजात का मूजिब बनकर आए हैं। अगर दुनिया हमारे साथ नहीं बैठती तो हमें चाहिए कि जिक्र इलाही की मजालिस लेकर दुनिया तक पहुंचें और इन मजालिस को आम करें। वो लोग जो इस वक्त दावत अल्लाह में मसरूफ हैं, उनको मैं खसूसियत से इस हदीस के हवाले से ये बात समझाना चाहता हूँ। दावत अल्लाह का ये मकसद, अगर सिर्फ यही मकसद हो कि अहमदियों की तादाद बढ़े, तो ये तो एक लगव और बेमानी मकसद है। अल्लाह से मोहब्बत करने वालों की तादाद बढ़ाना मकसद है, खुदा के जिक्र करने वालों की तादाद बढ़ानी है। बस अगर भर्ती करके आप एक तरफ फेंकते चले जाएं उनको, तो क्या फर्क पड़ता है? खुदा के बंदों की दुनिया तो अरबों तक है, चंद आदमी हमने अपनी जमात में मजीद दाखिल कर लिए, तो क्या फर्क पड़ेगा? वो आदमी बनाएं जिनके आने से, जिनके जिक्र से जमीन से आसमान तक फरिश्तों से भर जाएं, और फरिश्ते उन पर साया करें, और जो उनके साथ बैठे उसके भी मुकद्दर जाग जाएं, खा वो चलता चलने फिरने वाला मुसाफिर ही क्यों ना हो, जिसके पास वो बैठे हैं उसके नसीब जगा दें। और ये जिक्र इलाही से मुमकिन है, क्योंकि ये मजमून जिक्र इलाही के ताल्लुक में बयान हुआ है। बस जिन लोगों को आप अहमदी बनाते हैं उनके साथ जिक्र की मजलिसें लगाएं। आपको अल्लाह ताला ने जिक्र के बहुत से मजमून समझा दिए हैं। हजरत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उन खोई हुई बातों को दोबारा हासिल कर लिया है जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए लाए थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता मुसलमान बहकते बहकते उन बातों से दूर चले गए और उनके मजामीन को समझने के काबिल ना रहे। जिक्र का मजमून आ हज़ूर ने बयान फरमाया है, और बड़े बड़े सूफिया, जैसा कि मैंने पिछले खुतबे में बयान किया था, जिक्र के अंदाज बदल बैठे, उसकी माहियत से नावाकिफ हो गए, और कहीं से कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों को हांक कर किसी और जगह पहुंचा दिया। बस हमारा काम है उनको, बनी नौ इंसान को, खुसूसन उम्मत मोहम्मदिया को, वो जिक्र सिखाएं जिसका जिक्र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में भी मिलता है, और आपकी सारी जिंदगी उसी जिक्र पर मुश्तमिल थी, और इससे काम में बरकत पड़ेगी। सबसे अच्छी तरबियत यह है। मैंने तो सारी जिंदगी में गौर करके इससे बेहतर नुस्खा कोई नहीं देखा तरबियत का कि अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह ताला तो कुरान करीम फरमाता है, इज़ा फ़ालू फ़ाहिशतन ज़िक्रुल्लाह, वो ऐसे लोग हैं कि अगर उनसे फाहिशा भी हो जाए तो जिक्र इलाही करते हैं। अब फाहिशा और जिक्र इलाही के दरमियान इस्तग़फ़ार नहीं रखा, इसके बाद इस्तग़फ़ार रखा है। कुरान करीम पढ़ के देखें, फरमाया अल्लाह का जिक्र करते हैं फिर वो बख्शिश करते हैं। इससे मुराद ये है कि उनको मोहब्बत होती है, और अगर किसी से मोहब्बत हो और कोई ऐसा फेल सरजद हो जो उससे दूरी का मूजिब बन सके, तो माफी बाद में आएगी, पहले उसकी याद आएगी। और जो खुदा को पहले याद करते हैं फिर माफी मांगते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए खुशखबरी दी है कि हम उसे उन्हें माफ फरमा देंगे। तो बख्शिश भी मोहब्बत से पनपती है। अगर ताल्लुक हो और एक इंसान झुक जाए और कहे मुझे माफ कर दो, तो बाद दफा एक इंसान कहता है कि तुम क्यों माफी मांग रहे हो, मैं तो तुमसे नाराज हो ही नहीं सकता, या माफी मांग के शर्मिंदा ना करो। तो अल्लाह ताला के अजीब अंदाज हैं अपने मोहब्बत के इजहार के। फरमाया फाहिशा कर देते हैं बाद दफा, लेकिन फज़करुल्लाह, फौरन अल्लाह की याद आती है और झुकते हैं उसकी गिर्द, रोते हैं और कहते हैं खुदा हमें माफ फरमा दे। जवाब में अल्लाह फरमाते हैं मैं तो माफ कर चुका हूं। बस यही मजमून है जो इस हदीस में बयान हो रहा है। अल्लाह फरमाता है वो मेरे जिक्र करने वाले बंदे हैं, उनको बताओ, या फरमाता है कि मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं उनको माफ कर चुका हूं। मैंने आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज ये हैं, ان باتوں کے بعد یعنی جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انہیں بخش دیا اور انہیں وہ سب کچھ دیا جو انہوں نے مجھ سے مانگا, اور میں نے ان کو اس چیز سے پناہ دی جس چیز سے وہ میری پناہ طلب کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی اپنے پیاروں کی دعائیں سننے کے لیے گویا تیار بیٹھا ہے, اور فرشتوں کو جو بیچ میں ڈالا تو ان سے دو وجوہات سامنے آتی ہیں, ایک تو یہ کہ اپنے پیار کے اظہار کے لیے, دوسرے یہ نہیں کہ ان سے کچھ پوچھ رہا تھا, ان کو بتانا مقصود تھا, اور یہ بتانا تھا کہ ان بندوں کو میں معاف کر چکا ہوں, ان سے بخشش کا ان کے بخشش کے سامان ہو چکے ہیں, ان کو میں سب کچھ دے چکا ہوں جو مجھ سے مانگتے رہے ہیں. یہ اس لیے ضروری ہے اظہار کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ کرتا ہے, وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے, اور جس سے خدا راضی ہو اس کی تائید میں فرشتے چلتے ہیں. پھر تو یہ مضمون محض ایک کہانی کے رنگ میں نہیں ہے, اس کے اندر گہرے سبق ہیں اور بہت ہی گہری معلومات ہیں. مراد یہ ہے کہ ان کا ذکر جو خدا کا ذکر کرتے ہیں اللہ ملأ اعلیٰ میں فرماتا ہے, اور ان کے ذکر کے ساتھ خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام طاقتیں ان کی سمت میں روانہ, ان کی تائید میں روانہ ہو جاتی ہیں. وہ تائیدی ہوائیں اللہ ان کی خاطر چلاتی ہیں اور ان کی معیت بن جاتی ہیں. ایک اور حدیث میں حضرت انس سے جو مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور ذکر ہے کہ یہ حدیث اللہ نے چونکہ بیان فرمائی ہے, یہ حدیث قدسی ہے, جب بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں, جب وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں, اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتے ہوئے جاتا ہوں. یہ ہے تو بہت پیارا ذکر, چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا, لیکن پتہ نہیں لگتا ہے گھنٹہ یوں نکل جاتا ہے جیسے چند منٹ ہوں. تو انشاءاللہ پھر باقی آئندہ سے ہی, آئندہ ایک خطبہ جو ہے میرا انشاءاللہ موریشس میں آئے گا اور وہاں سے میں مخاطب ہوں گا. جس طرح موریشس والے اس وقت ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں, اگر وہ پتہ نہیں ٹیلی ویژن کی وہاں اجازت بھی ہے کہ نہیں, مگر دنیا والے دیکھ رہے ہیں, تو اگلے جمعے میں آپ انگلستان والے انشاءاللہ ٹیلی ویژن میں مجھے دیکھیں گے اور سنیں گے. اور بیک سب کی یاد تو ممکن نہیں ہے, لیکن تازہ تازہ جدائی آپ سے ہوگی, اس لیے اس موقع پر یاد رکھیں, آپ یاد رہیں گے, اور کبھی کبھی میری آنکھ آپ کو تصور میں دیکھے گی ضرور کہ اس طرح مجلس کو یہاں لگی ہوئی ہے کو وہاں لگی ہوئی ہے. تو دعا کریں, آخر پر یہ درخواست ہے کہ اللہ یہ سفر بابرکت کرے اور اس کے نیک نتائج ظاہر فرمائے, ایسے منصوبے بنانے کی توفیق ملے کہ موریشس کا جزیرہ جلد از جلد احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی آغوش میں آ جائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكر الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.